नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में व्यापारिक नेताओं के साथ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने कहा कि सीईओ गोलमेज सम्मेलन में एआई प्रौद्योगिकी और नवाचार जगत के विभिन्न हितधारक एक साथ आए। चर्चाएं ज्ञानवर्धक और दूरदर्शी थी, जिनका मुख्य उद्देश्य एआई को जिम्मेदारी से विस्तारित करना, वैश्विक सहयोग को मजबूत करना और विकास के अवसरों को खोलना था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट में वैश्विक जनहित के लिए एआई के प्रति सामूहिक संकल्प विकसित करने का आह्वान किया। समिट का औपचारिक शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने एआई के लोकतंत्रीकरण पर बल देते हुए कहा कि इसे विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए समावेशन और सशक्तिकरण का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि समिट में विभिन्न क्षेत्रों के प्रस्तुत समाधान मेक इन इंडिया हैं।
एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, दिव्यांगजनों की मदद, मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन की तमाम जरूरतों से जुड़े जो भी सॉल्यूशंस यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं, वो इस फील्ड में मेड इन इंडिया की ताकत और भारत की इनोवेटिव कैपेबिलिटीज का बहुत बड़ा उदाहरण है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट भारत को नए युग में नेतृत्व के लिए तैयार करता है, जो सरकार के कार्यकाल में हासिल की गई उपलब्धियों पर आधारित है। श्री शाह ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन नवाचार और लोकतंत्र की असीम शक्ति के माध्यम से मानवता की प्रगति को गति देने का भारत का विश्व को वादा है। सिक्किम के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भाग लिया। प्रतिनिधि मंडल में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष नवराज गुरुंग, सचिव विमल रॉय, प्रधान निदेशक सेरिंग समदूप, निदेशक विजय बसनेट और संयुक्त निदेशक सम्राट प्रधान शामिल थे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सहयोग से आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू, राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एलमुरुगन आज कोयम्बतूर हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे और अन्य सुविधाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सियालदह अदालत को सूचित किया है कि आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई को कोलकाता पुलिस द्वारा किसी साजिश या सबूत से छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला है। पीड़िता के माता पिता द्वारा आगे की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील अनुराग मोदी और पार्थ सारथी दत्ता ने कोलकाता पुलिस के जांच विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुलिस ने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने कहा है कि मैतई और कुकी दोनों समुदायों के बीच संबंधों को सुधारना और मौजूदा अविश्वास को दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये बयान राज्य में संघर्ष के कारण बेघर हुए आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में दिया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार पुनर्वास को सफल बनाने और अविश्वास को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कल संवाददाताओं से बातचीत में अर्थशास्त्रियों ने कहा कि बांग्लादेश की नवनिर्वाचित सरकार बढ़ते विदेशी ऋण दबाव का सामना कर रही है और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए उसे सावधानी पूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने केरल और माहे में अगले दो दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक ने 11 साल बाद रणजी ट्रॉफी फाइनल में प्रवेश किया। लखनऊ में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में कर्नाटक और उत्तराखंड के बीच मैच ड्रॉ रहा। अब कर्नाटक का सामना 24 तारीख को कर्नाटक के हुबली क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले फाइनल मैच में जम्मू कश्मीर से होगा। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में चेन्नई में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हरा दिया। इससे पहले कोलंबो में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से पराजित किया। इस बीच विश्व कप के सुपर 8 चरण के मुकाबले तय हो गए हैं। ग्रुप ए में भारत का पहला मुकाबला 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से, 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से और अंतिम मुकाबला 1 मार्च को वेस्टइंडीज से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।